दुनिया को जो मुट्ठी में नहीं अपने दिल में रखे वो होता है सच्चा राजा। इन कमीनों की तरह नहीं जो सबको अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हैं जाकिर साहब। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। मैं या तो सर उठा के जी सकता हूं या फिर सर झुका के। बीच का कोई ऑप्शन नहीं। जाकिर साहब मुझे सुन तो रहे थे लेकिन लॉकअप के बाहर से। उन्होंने कहा, देखो सुशांत, दूसरों पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा, मुझे सच चाहिए। मैं उनकी ओर मुड़ा और मैंने कहा, व्हाइट हाउस में मिलेगा वो, मुझे बताना होता तो अभी तक बता नहीं दिया होता। जाओ साहब, कहीं आपकी आखिरी उम्मीद भी ना टूट जाए। पूरी पुलिस फोर्स व्हाइट हाउस पहुंची। जाकिर साहब ने शिखर और उदित के कमरों की फिर तलाशी ली। जब पुलिस तलाशी लेकर व्हाइट हाउस के बाहर आई तो उनकी जीप की हेडलाइट चालू थी और ठीक सामने से वो आ रहा था, सुमान। पुलिस ने उसे दूसरे लॉकअप में रखा और जाकिर साहब के वापस आने तक मैंने मस्त एक प्लेट बिरयानी खाई। जाकिर साहब आए और बोले, सुशांत, जो जो तुमने बताया था वो सही था, सारे सबूत अपनी जगह पर मिले, लेकिन तुम्हारी स्टेटमेंट जरूरी है सुशांत। मैं चेयर पर बैठा था और जाकिर साहब खड़े थे। मैंने कहा, बैठिए साहब, आपको एक मस्त कहानी सुनाता हूं। शिखर चंदानी 7,500 एकड़ की प्रॉपर्टी का एक लौता मालिक। कुछ जमीन छीनी हुई और कुछ बाप दादा से मिली थी। 78 पेट्रोल पंप, 43 फाइव स्टार होटल, 4 शॉपिंग मॉल, ये सभी इसके ही नाम पे चलते थे। अब वो बताता हूं जो आपको मालूम नहीं। इनके यार्ड में चलती थी किडनैपिंग, ड्रग सप्लाई करना, स्मगलिंग करना, लड़कियों को बेचना खरीदना, इन्हीं के गैर कानूनी धंधे थे साहब ये। आधे से ज्यादा गांव वालों की जमीन का मालिक भी अब वही बन चुका था। हम उसी के स्कूल में पढ़ते थे साहब। उसके ब्लैक के पैसों को व्हाइट में दिखाने का काम भी तो स्कूल ही करता था, और एक नहीं बहुत स्कूल थे उसके। मेरे पापा उनके यहां माली का काम करते थे साहब। सब कुछ जानते थे पर कभी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। सुमन के पापा नौकर थे शिखर चंदानी के घर पे, और उनकी और मेरे पापा की गहरी दोस्ती थी। पूरे गांव में सुमन का ही घर सबसे अलग, गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर था। उदित शिखर चंदानी का पोता। उदित का बाप तो कार एक्सीडेंट में मर गया था साहब। हमारे फिजिक्स के पेपर में 4 दिन का मस्त गैप मिला था और इसलिए हमने सोचा कि सुमन को मेरे घर आना चाहिए। मैं उसे अपने घर लेके गया था। रात भर पढ़ने वाले थे हम। मेरे पापा को चंदानी ने उदित के साथ कुछ डिलीवरी करने के लिए गांव से बाहर भेजा था साहब। पापा गाड़ी चला रहे थे। उस दिन गांव के गेट पे पुलिस चेकिंग कर रही थी। किसी आदमी ने पुलिस को बता दिया था कि आज डिलीवरी होने वाली थी। उदित वैन से उतरा, चंदानी साहब से बात की और पापा को माल खाली करने को कहा, लेकिन कहां खाली करना है यह तो मालूम ही नहीं था। उदित अगर ज्यादा हलचल करता तो पुलिस को पता चल जाता कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उसने गाड़ी सुमन के घर के पास लेने के लिए कहा। पापा ने माल उठा के सुमन के घर में ले जाना शुरू किया। अंदर अंकल ने, मेरा मतलब है सुमन के पापा ने, माल रखने से मना कर दिया। उदित और उनमें बहुत कहा सुनी भी हुई लेकिन पापा ने दोनों को शांत किया। पापा ने कहा,
भाई क्या फर्क पड़ता है, दिक्कत क्या है तुझे, क्यों नहीं रखवाना चाहता तू?
अंकल ने कहा,
जैसे कि तुझे कुछ मालूम ही नहीं।
पापा कंफ्यूज हो गए।
मतलब? गांजा और ड्रग्स है इसमें, पहले भी रखने के लिए कहा था इन लोगों ने, बाल बाल बचे थे पुलिस से, फालतू में क्यों काम करूं ये, गांव में भी इज्जत खराब।
उदित ने अंकल का गला पकड़ा और कहा, बुढ़े साले, ठीक से बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा कह रहे तेरे को, रख माल। अंकल ने उसे धक्का दिया तो वो जाके सीधा गैस से टकराया। बात बढ़े उससे पहले पापा ने उसे बाहर ले जाना ही सही समझा। बाहर जाते ही बहुत बड़ा धमाका हुआ साहब। घर का एक एक चिथड़ा आग में समा गया। उदित जब गैस से टकराया था तो उसने गैस चालू कर दी थी साहब, सारा माल भी वहीं जल गया। उस रात पापा ने दिल पर पत्थर रख के ये बात सुमन को बताई और कुछ भी नहीं छुपाया सुमन से। अगली सुबह मुझे घर पे सुमन कहीं दिखाई नहीं दिया तो बाहर गया मैं, उसे ढूंढ रहा था। बाहर जाते ही पता चला कि चंदानी की फैक्ट्री में किसी ने आग लगा दी है। सुमन थोड़ी देर बाद घर आया तो वो बोला, आज फैक्ट्री चलाई है, कल उन दोनों की बारी। मैं उस दिन शौक में था जब मैंने इसे उदित के साथ फूकते देखा था साहब। उस दिन पेपर देके जब स्कूल से बाहर निकला तो सुमन मिला था। उसने उसी दिन बता दिया था मुझे कि पापा उदित के खिलाफ गवाही दे सकते हैं और इसीलिए चंदानी ने पापा को मारने की सुपारी दी है, और ये भी बोला कि आज चंदानी मेरे घर आएगा। घर गया और माँ ने जब ये कहा कि वो नीता दीदी की शादी में जा रही है, तभी मैं समझ गया था साहब कि माँ झूठ बोल रही है मुझसे, क्योंकि नीता दीदी तो खुद किसी लवर के साथ भाग गई थी। माँ को लगा मुझे यह मालूम नहीं होगा। फिजिक्स के पेपर के एक दिन पहले सुमन ने पूरा प्लान बताया था मुझे, लेकिन साले ने यह नहीं बताया था कि वो उदित के साथ फूकेगा। मैं जब स्टोर रूम से बाहर गया तो इस कमीने ने उदित से सब कुछ उगलवाया था साहब, कितने धंधे, कितनी प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। मेरे पापा को मारने उदित जाएगा ये हमें मालूम था, इसलिए सुमन मम्मी पापा के पीछे गया। मम्मी पापा को रोक कर उसने सब कुछ बता दिया कि उदित आज उन्हें मारने आएगा, इसलिए सुमन ने मम्मी पापा को अपने दोस्त के घर पे छोड़ा। इधर उदित ने चंदानी को फोन किया कि पापा अभी तक पहुंचे नहीं। उधर चंदानी तुरंत मेरे घर पे आ गया। सुमन फैक्ट्री के गोडाउन में पहुंच चुका था, वही सबूत ढूंढने जो सबूत आज आप लोग लेके आए हो। लेकिन चंदानी के आदमी सुमन के पीछे पड़ गए और उदित को तो पता चलना ही था। चंदानी को पता चला तो चंदानी अपने आदमियों को लेके चला गया व्हाइट हाउस और उदित को अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुमन को ठिकाने लगाने का ऑर्डर दे दिया। उदित जिन लड़कों के साथ सुमन को मारने आया था वो सुमन के दोस्त थे। उदित को लगा कि उसने सुमन को फंसाया है लेकिन सुमन ने उसे अपने जाल में फंसाया था। मैं उस रात नीता दीदी के घर नहीं, मम्मी पापा से मिलने सुमन के दोस्त के घर गया था। सुमन ने पापा को पूरा प्लान बता दिया था। वहां से जब मैं निकल रहा था पापा ने सिर्फ इतना ही कहा था मुझसे, बेटा वो दोनों बचने नहीं चाहिए, जीना हराम कर दिया है हमारा, हम गांव वालों को क्या से क्या बना दिया। उधर सुमन और उसके दोस्त पहले से ही उदित की मरम्मत कर रहे थे। इधर मैंने भी चंदानी को फोन लगा दिया। उदित को आधे घंटे में ढूंढ सकता है तो ढूंढ, तेरी 7,500 एकड़ की प्रॉपर्टी के किसी एक कोने में मिल जाऊंगा, वरना गया तेरा पोता आज। चंदानी के सारे आदमी सुमन के पीछे लग चुके थे, लेकिन उस गधे को, मेरा मतलब है चंदानी को, ये कौन समझाए कि उसका व्हाइट हाउस भी तो उसी 7,500 एकड़ की प्रॉपर्टी में आता है। हम सभी की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। मैंने और सुमन ने यही सही समझा, उदित, सुमन और मैं, हम तीनों को ही चंदानी के पास जाना चाहिए। मैं और सुमन उदित को लेके चंदानी के ठीक सामने खड़े हो गए। चंदानी की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई साहब। आज सुमन के दिल में जल रही आग को शांति मिलने वाली थी साहब। उसने हाथ में एक हथौड़ा लिया था। जिस दिमाग में ये शैतानी ख्याल आते हैं उसी दिमाग को उसने खत्म करना सही समझा साहब, और वो हथौड़ा ठीक उदित के सर पे मारा, और तब तक मारा जब तक उसका दिल ना भर गया। चंदानी अपने पोते को लेके रो पड़ा था, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा था। तभी सुमन बोला, सारे फसाद की चढ़ तो ये बुड्ढा है साला, इसे क्यों छोड़ू, और उसने उसी हथौड़े से उसका भी खेल खत्म कर दिया। मेरे भी दिल को ठंडक पड़ी साहब। तब ध्यान आया उदित को ढूंढते हुए, ये लोग मेरे मम्मी पापा को तो जरूर पकड़ेंगे, उनका शिकार ये लोग जरूर बनाएंगे साहब। मैंने सुमन को जबरदस्ती मम्मी पापा के पास भेजा और मैंने वहां से पुलिस को फोन किया। अगली सुबह मैं शिखर और उदित की लाश के सामने खड़ा था। मेरे हाथ में शिखर चंदानी और उदित के खून से भरा हथौड़ा था। पुलिस आई और मुझे जीप में बैठा के ले गई। और फिर आपने ही तो पूछा था,
शाना समझता है क्या खुद को? यार ए, तुझसे बात कर रहा हूं मैं। जब तक शांत हूं ना तब तक ठीक है। एक बार उठा ना जगह से, साले उठते बैठते नहीं छोड़ूंगा तुझे।
और मैंने आपसे यही कहा था ना साहब कि मैंने कुछ नहीं किया। जाकिर साहब चुप रह गए, कुछ कह ही ना पाए। एक महीने बाद हमें फांसी की सजा हुई और मेरे मम्मी पापा हमारी ओर देख मुस्कुरा रहे थे। पूरे गांव वालों को अब आजादी मिल चुकी थी, उनकी जमीन अब खुद उनकी थी। और मैं आपसे कहानी सुनाते हुए ये सोच रहा हूं, वाह कि क्या जिंदगी थी।